नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन कल नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन को आंतरिक सुरक्षा के समाधानों के एक पोर्टल के रूप में तैयार किया गया है, जो रणनीति और नीति निर्माण के लिए व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 11 वर्षों में कट्टरपंथ, उग्रवाद, विद्रोह और नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियानों में उल्लेखनीय प्रगति की है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर तृणमूल कांग्रेस की आशंकाओं का खंडन करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में SIR पर कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिला था। आयोग ने प्रतिनिधिमंडल से मसौदा सूची जारी किए जाने के पश्चात दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने कहा कि तब तक पार्टी को चुनाव अधिकारियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को एक पत्र में कहा है कि BLO पर राजनीति दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव न बनाया जाए। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बस्तियों, बहुमंजिला इमारतों और गेट बंद आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र स्थापित करें। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा राज्यसभा के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 1 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। भारत वर्ष 2026-27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में सबसे ज्यादा वोटों के साथ फिर से निर्वाचित हो गया है। परिषद के चुनाव लंदन में संगठन की असेंबली के 34वें सत्र के दौरान हुए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के 10 प्रमुख देशों से सबसे अधिक वोट मिले। भारत को 169 में से 154 वोट मिले। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से स्थिति असामान्य हो गई है। श्रीलंका में इससे 69 लोगों की मृत्यु और 34 लोगों के लापता होने की खबर है। चक्रवात से 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कल सुबह चक्रवात के तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचने की आशंका है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
श्रीलंका में नदियों के बढ़ते लेवल और नए लैंडस्लाइड के खतरों के चलते रेस्क्यू टीमें समय के साथ दौड़ रही हैं। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के साथ जुड़ के अब दूर दराज के इलाकों में फंसे परिवारों तक पहुंच पा रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत से आज सुबह और मेडिकल सप्लाईज पहुंची हैं और राहत फ्लाइट्स आने वाली हैं। डिजास्टर अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि केलानी और महावेली समेत बड़ी नदियां बाढ़ अलर्ट स्टेज पर पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बेघर परिवारों के लिए 266 शेल्टर खोले हैं, 47 पुलिस डिवीजन हॉटलाइन एक्टिवेट की है और लोगों से अपील की है कि खराब मौसम जारी रहने पर बाढ़, लैंडस्लाइड और पेड़ों की गिरने की चेतावनियों के प्रति अलर्ट रहें। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
इस बीच भारतीय वायुसेना ने 21 टन राहत सामग्री और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 80 जवानों को कोलंबो पहुंचाया है। इनके अलावा 8 टन उपकरण भी भेजे गए हैं। आवश्यक भोजन और अन्य राहत सामग्री श्रीलंका में दितवा से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए भेजी गई है। दितवा चक्रवात के मद्देनजर भारत ने श्रीलंका में राहत उपायों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु अभियान शुरू किया है। भारत के तन्वी शर्मा, उन्नति हुडा और किदाम्बी श्रीकांत सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लखनऊ में महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने हांगकांग के सिन यान हैपी लॉ को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।